வேஸ்டமானது.
कल्याण कारण बने। अब कोष्ठस्थ ध्यानोपम
ये संवेदन ये दो मात्रा हो गई कोष्ठस्थ ध्वनियों का नाम जैसे कि जो लोग खेती किसानी करते हैं वे अपने बीजों को और एक कोठे में आधेर करके रख देते हैं। वो कोठा कैसा होता इतना सुरक्षित रहता है कि उसमें वो बीज सारी करता है। ठीक इसी तरह से जो अपने बुद्धि रूपी कोठे है और ज्ञान को भर के रखते हैं जब जरूरत पड़ती है ताजा एकदम बढ़िया सा और उनको प्राप्त हो जाता है। ये कोठा वृद्धि इसके माध्यम से क्या होता है कि जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जरा भी अपने के स्वरूप से ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। इस वृद्धि के माध्यम से जितना संचित किया है एवटिक जैसे कंप्यूटर में फोन कर दिया है तो फिर भी दुखना है। अगर कोई ने दूसरा बटन दबा दिया तो गायब हो जाएगा और अगर गायब इंफेक्शन हो गया उसमें तो फिर होगा तो गायब हो जाएगी पूरी की पूरी है ना। लेकिन लगातार ऐसा नहीं होगा। ये निधि प्राप्त हो जाने के बाद जितना उनके लिखा है कि भंडारी जैसे अपने कोठे में धान को इकट्ठा सुरक्षित करके रखता और उसको प्रथम प्रथम ये भी एक विशेषता है कि कौन कौन से धान गेहूं अलग रखा चना अलग रखा। इसी तरह से बिना किसी के उपदेश के समस्त पदार्थों का जो ज्ञान है वो उनके कोठे में सुरक्षित रहता है। उसको कोष्ठस्थ धान्यों का नाम की रिद्धि देते हैं और एक बीजन अर्थात एक मात्र जो है किसी बीजाक्षर को स्मरण करते ही बीजाक्षर विभिजाक्षर जैसे उनसे कहा कि अ वो पूरा का पूरा ज्ञान आपको उनके माने ट्रॉफी खुल गई ओ हुआ है अ पूरी ट्रॉफी में आनंद जितना पीड़ है वो पूरा का पूरा उनको बाहर आ गया। ये कहलाती है एक ही अर्थात किसी भी एक विभिजाक्षर को जो अपने भीतर स्थापित करते हैं उसके माध्यम से उनको सारा ज्ञान हो जाता है। एक वेद नाम की विद्य जिला असाधारण सामर्थ्य भाई चमत्कृत नहीं होना वे परिणामों की विशुद्धि से प्राप्त होने वाली चीज है और कुछ नहीं। परिणाम निर्मल हो तो ये तरह की विद्य असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान की असाधारण शक्ति है कि ये तो अपन को अपन के कई बार थोड़ा कुछ याद थोड़ा एक एकाधी याद है कभी नहीं पूरा बता दूंगा एक अक्षर में बता दू शुरू का फिर भी पूरा बता दूंगा ठीक है। कोई उनके लिए ही सिर्फ एक अक्षर का आत्मा कहा का आत्मा कह दिया तो वो पूरा का पूरा ज्ञान उनका खुल गया। इस तरह एक बीज वृद्धि कह जाती है बीज वृद्धि भी कह जाती है इसको बीज वृद्धि भी कहते हैं। बीज वृद्धि वृद्धि संरूर संस्कृति चंद्रम संस्कृति वृद्धि में बहुत बड़ा हो रही है। चक्रवर्ती की जो सेना होती है वो कितनी ओवर में खड़ी होती है तो कह रहे कि 12 ओवर लंबा 9 ओवर चौड़ा एक ओवर 2000 कोष का होता है। अब करके बात करते रहे कौन पड़े झगड़े में है ना इतना लंबा सेना एरिया इंग्लिश करिएगा इतने बड़े एरिया में चक्रवर्ती की पूरी सेना खड़ी है और जिसमें जल सेना थल सेना वायुसेना जो आज है वो वहां पर 7 प्रकार की होती जिसमें कि रथ भी है प्यादे भी है घोड़े भी है और मैंने उनके जो बंदर आगे आगे चलने वाले हैं 7 प्रकार की सेना होती वो सारी सेना अक्षौणी सेना जिसमें 1 लाख रथ और 1 लाख हाथी होते हैं। ये और कितने पदार्थी होते हैं तो 3 लाख पदार्थी होते हैं मतलब जो थल सेना है 3 लाख और उनके पास बाकी सेना रामायण का बन किया एक अक्षौणी सेना इतनी पूरी एक मिल कर रहे हैं इतने बड़े एरिया में इतनी पूरी की पूरी सेना खड़ी हुई क्या मजे की बात है कि कुछ तो बोल रहे हैं अक्षरात्मक और कुछ सिर्फ ध्वनियात्मक है सबके शब्द वहां पर गुंजायमान हो रहे हैं लेकिन जिनको संपूर्ण संशोत्री नाम की रिद्धि है ऐसे मुनि महाराज सबके शब्दों के अलग अलग पकड़ करके उनके अर्थ जानने की सामर्थ्य हाथी की आवाज आ रही है तो वो हाथी क्या कह रहा है क्या कहना चाह रहा है घोड़ा नहीं आ रहा है तो क्या कहना चाह रहा है वो वहां पूरी सेना कुछ अपना 1 लाख लोग क्या क्या अलग अलग कि आज भी दस लोग एक साथ बोले, अपन अपना एक थोड़ा सा प्रयोग कर दें, दस लोग एक साथ बोले और अपन कंसंट्रेट होकर के और सबकी सुने, अपन बता सकेंगे कि आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने दस लोगों ने अलग अलग सबकी आवाज अपन पहचानते हैं। यदि पांच लोग वहां बैठ के हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे और अपन यहां बैठे अपने काम में लगे, क्यों ये लोग हल्ला कर रहे हैं, कौन कौन है, अच्छा ये है ये है और ये, वहीं से आवाज सुन करके उनको बड़ा ये चाहिए ये ये होना चाहिए। एक को तो याद नहीं हो रहा ये कौन है, उनकी आवाज को नहीं बढ़ रही, ये होना चाहिए, ये पांच लोग बैठे ये पता कर लिया था अपने जानने की मंदिर से, बस किसी को उन्होंने कहा कि उनका कितना ज्ञान है कि वहां पर जितना भी उस एरिया में जो भी हो रहा है उस सबकी आवाज पहचान रहे हैं, उसका अर्थ जान रहे हैं कि वो क्या कहना चाहिए, ज्ञान अपनी उत्कृष्ट है तभी पता है कि अपने कल्याण की भावना भा रहे हैं, उनकी गिनती से प्रभावित नहीं है, उनकी विशुद्धि से प्रभावित नहीं है, ध्यान रखें चमत्कार से प्रभावित नहीं है, चमत्कार के लिए उन्होंने जो परमाणु की उज्ज्वलता प्राप्त की है उसके लिए उससे प्रभावित है, हम तो आपके लिए छोटी मोटी से चमत्कार से प्रभावित हो सकते हो जाते हैं, उस चमत्कार के पीछे जो विशुद्धि छिपी हुई है वो ही हमारे लिए होती है। ऐसे यहां पर भी लेना और पदायन साड़ी, जैसे कि नमः श्रीवर्धमानाय मृदभूत प्रदलात्मने साधो का नाम प्रलोका नाम विद्या दर्शनाय के, इसमें कितने चरण हैं, चार चरण हैं और अक्षरों से मिल करके पद बनता है, तो नमः एक पद हो गया, श्री एक पद हो गया, वर्धमान एक पद हो गया, और इस तरह की सहमत है कि आपने कोई एक पद बोल दिया, एक महाराज ऐसे हैं जिनको कि कोई एक अक्षर मात्र बोल दिया उससे एक महाराज ऐसे हैं जो अक्षरों के समूह मैंने पद नमः अंकिता कहा तो मैंने पूरी की पूरी उनकी चौकी खोल गई और पूरा डेढ़ सौ श्लोक ये नमः अकेले कहने से रत्न शास्त्राचार के डेढ़ सौ श्लोक पूरे के पूरे उनको इस व्रत में आ गए, क्योंकि हमने फिर बताया ना शास्त्राचार के उनको तो एक पद बोला उसके बाद शाम उन्होंने आसानी से स्मरण में कर लिया, अपने उसने अंदर में पूरा खो जाने के अंदर और स्मरण कर लिया, ये कहलाते पदायन सारी वृद्धि। इस वृद्धि को धारण करने वाले महाराज जी विषय भी हमारे लिए कल्याणकारक बने। चतुर्विधा वृद्धि बलन बढ़ाना, इस प्रकार से ये चार हो गए, कोष्ठस्थ धर्मोपम एक ही वृद्धि वृद्धि संशोधि और पदानुसारी विचारों विस्तार उनको धारण करने वाले बुद्धि बलन बढ़ाना उसकी क्रिया से परमर्श लेना, अपने पिछले बार में उसकी क्रिया से परमर्श लेना उसका ऐसे पढ़ करके हेल्प करिए, उसको नमः का अर्थ बताना चाहेंगे, जैसे हम संकित हो गए आपको नमः का मतलब होता है अस्माकम हम सबके लिए, नमः का मतलब संस्कृत का शब्द न मतलब अस्मातम, अस्मातम मतलब हम सबके लिए, तो स्वस्थी मन हम सबके लिए कल्याणकारी है, कौन परम ऋषि क्रिया से, जो परम ऋषि है वे हमारे स्वस्थी क्रिया से कल्याण में कारण बने, इस तरह ये किसी विषय में टोटल दोनों पापों में जन कल्याण मनुष्य कल्याण है दिव्य अवधि ज्ञान और फिर कोष्ठस्थ वृद्धि वृद्धि से एक दिव्य कि दीर्घ वृद्धि वृद्धि फिर संग्रह संस्कृत की वृद्धि और फिर पदानुसार ऐसे साथ एक और करते पांच स्पर्शन संस्प्रगण का दौरान आस्वादन घ्राण विलोचन ये पांच इंद्रियां हैं, अब देखेंगे कि पांच इंद्रियों के माध्यम से कौन कौन सी चीजें उनको प्राप्त हो जाती है, ये सब जो है संस्पर्शन स्पर्शन इंद्रिय का विशेष संयुक्त प्राप्त हो गया, संस्प्रवण बहुत दूर की बात है कहां चल रही है नीलों को दूर कोई बात कर रहा है इसका भी वे अपने कान के द्वारा सुन लेते, स्पर्श अपन तो इस चीज को छोड़ के देखेंगे तो अपने को उसका ज्ञान होगा, लेकिन ये कई योजन दूर की वस्तु को भी और ठंडी है कि गर्म है कैसे है कि भारी है कि घर है कि कठोर है, ये सब पता करने नाथ प्रकार का स्पर्श नहीं बैठे बैठे उस वस्तु के पास नहीं जो छुआ भी है, फिर भी उनकी उस इंद्रिय विशेष का ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय विशेष का इतना विशेष ज्ञान, श्रवण इंद्रिय करण इंद्रिय का इतना विशेष ज्ञान और दूराग आस्वादन दूर से भी इतनी दूर की वस्तु घटती है कि उनकी ये चर्चाई के साड़ी है कि कड़वी है, पांचों प्रकार के रस जानने की सामर्थ्य ज्ञान का नहीं सोचते हैं। तो देखते हैं ग्राम वाला तो देखते हैं अपनी की बदलने शक्ति है, बिजली वगैरह की और कुत्ते की ग्राम की शक्ति अपने को बस गई होगी कि घर को सुन करके बता देगा कि कौन ये ट्रेनिंग देते हैं उनको कुत्तों को और वो खोल देते उस चीज को सुन करके और उस व्यक्ति को खोल देंगे, ये क्या चीज है, ये इंद्रिय विशेष की विशेषता है की अपनी क्षमता है। तो वो पूरी मैंने जितनी क्षमता है उससे भी एक्स्ट्रा आ गई, उससे भी अधिक शोक इसलिए ज्ञापन स्पर्श इंद्रिय का जो क्षेत्र है जितनी दूर तक वो जान सकती उसकी भी संख्या पूजन आगे तक की बात को जान देना सब लोग मानेंगे। स्पर्श इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, अपने कर्म इंद्रिय है, आस्वादन रचना इंद्रिय, ध्यान इंद्रिय और विलोक नाम तक की इंद्रिय पांच इंद्रिय होगी, पांच इंद्रियों के जितने उत्कृष्ट विषय है उनके भी संख्या पूजन आगे जाकर के तपस्या के द्वारा उसके भी बाहर की चीज का ज्ञान वो कर लेते हैं। इस तरह से ये पांच विद्याएं हो गई है, दिव्यमति ज्ञान है उसके ज्ञान से संतिमति ज्ञान अस्तित्व ज्ञान जो है वो इंद्रिय ज्ञान की सहायता से होता है, ये इंद्रिय की ऐसी सहज प्राप्त हो जाती जो है इन सब चीजों के असाधारण शक्ति प्राप्त हो अवलोकन की पांच इंद्रियों इन पांच इंद्रियों के नाम दिव्यान मति ज्ञान बना बहनता ये जो दिव्य मति ज्ञान के बल से हमें सामर्थ्य प्राप्त हुई है, दिल से स्पर्श जानने की सुनने की आस्वादन की सुनने की और देखने की ये पांचों इंद्रियों की जो विशेष सामर्थ्य प्राप्त होती है ऐसी पांच विद्धियां अलग अलग ये सब बुद्धि वृद्धि चलाई है। तो पहले कितने थे सात और पांच तीन गए बारह कुल जो है अठारह है। अब अपन बाकी बाद में पढ़ेंगे कितने अध्याय पढ़ रहे हैं फिर अगर गृहस्थ के समय है तो उसका संस्कार वगैरह जैसे गृहस्थ का किया जाता है वैसा करना चाहिए। शायद यही मेडिटेशन है, व्यक्ति है भक्ति वगैरह पढ़ने की साधना के लिए लिखा है कि उनके दस दिन के वहीं बैठ करके और फिर पांच प्रकार की भक्तियां पढ़ी जाती हैं वो अलग, इसलिए ये जरा कंफ्यूजन हो गई है। ये आपने कहाँ से लिखा मैं ध्यान देख रहे हैं कहूँगा। खूब पूछो गुरु को और माता को बताओ तब उसकी वस्तु मिलती है। महाराज साहब ये बातें प्रदान हुई इतने से पहले वाले के समय में आगे दूसरी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सामान्य रूप से वहां का समझना चाहिए तो जब सामू का मरण हो गया तब उसकी दे उसकी दे तो सामान्य भरण और उसका जो संस्कार करना है वो करो। ये हो गया माता खूब पूछो गुरु ज्ञान बढ़ाना हो तो गुरु से पूछना बहुत पूर्वक पूछना तो क्या होगा इससे हमें इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होगी और खूब पताओ माता को बेटा वो अपने काम में लगी रही थी और बेटे जी के साथ बोलने नहीं पाती थी वो रो करके बुला देता है बड़ा रो ना रोजा नहीं जाती इसलिए ऐसा लिखना पड़ा कि माँ को पताओ को मतलब नहीं थी उसे कष्टा ऐसे नहीं मतलब माँ से अपनी बात बच्चों के लिए बनाएंगे बच्चों को से तंग नहीं करेंगे परेशान नहीं करेंगे ऐसा अर्थ नहीं था ऐसा ले सकते हैं लेकिन ऐसा वास्तविक ऐसा अर्थ नहीं तंग करने का परेशान करने का मां कभी भी बेटे की किसी भी प्रयास से तंग होती परेशानी नहीं होती लेकिन जब तक हम अपना उत्साह पता करने करेंगे तब तक हम कृष्ण वाली की मां के पास को जाकर के और अपनी चीज मरना की नहीं पड़ेगी पूरा अधिकार बनता है मां के ऊपर पिता से तो पिता से तो उससे पूछना ये कहना है मैं सब बढ़ते रहते बाकी तो जो करवाना है मेरी चीज को कर जाना और कितनी बेईमानी कर करके और बात बारह बजे नौकरी तो पिता तो सेफ नहीं करेगा लेकिन नासिक कर लेगी कैसे भी गड़बड़ करके बैठेगा पीछे के दरवाजे से आ जाओ पिता ने देख पाने तुम ऐसा क्यों करते हो खोटा काम चलो अभी भूल के होगी भोजन कर दो सो जाओ सवेरे बात करना अभी भी खेलना मत करना ये इस पर सेफ करती तो कह रहे हैं कि एक जगह है जहां से आपको अगर अपने इष्ट वस्तु पाने तो पूरे अधिकार से पाने सताना का मतलब ऐसा नहीं कि उसको प्यार कर करना या उसको तकलीफ पहुंचाना माँ को सभी नहीं देना है भला उनके सीधे अर्थ निकालने तो हृदय हो जाएगी उनके सीधे अर्थन पहले तो उत्तर निकाले उसकी माँ से हम अधिकार पूर्वक जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक हमें अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी और जब तक गुरु के सामने हम अपनी जिज्ञासा व्यक्त नहीं करेंगे हम अपनी अज्ञान का व्यक्त नहीं करेंगे हम ज्ञान नहीं ले करेंगे तो हम क्यों मानेंगे आप अधिकार मेरे भगवान नहीं आप अध्ययन करो दया के व्यक्ति बहुत पूछे बार बार हम पूछेंगे के लिए भी उनके अज्ञान समझेंगे तो बहुत अज्ञान पूछ लो अज्ञान तना प्रकट हो जाएगा पूछने से लेकिन ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा पापों इसलिए ये बात लिखना पड़े कि खुद पूछो गुरु जनों से और माता को अधिकार पूर्वक और अपनी चीज उनसे प्राप्त करो सभी प्राप्ति हो। महाराज सत्ता देवी भक्ष है कि अवक्ष है सत्ता देवी अवक्ष है लेकिन मजा ये है जितने पूछा है इतनी पूछा क्योंकि उसको कोई नया रिवाज भी खाते हैं इसलिए पूछा हुआ है और कुछ नहीं उनका नाम नहीं बताऊंगा बाकी सब जानते हैं और वो उसके लिए क्या हेतु दे देते हैं हमारे लिए तो इसमें कोई दोष नहीं है हम तो औषधि के लिए ले रहे हैं सदा एक अनुकार है देने देते हैं मेरे ऐसे किसी होने के लिए देखते हैं आइसक्रीम देता हूँ लेकिन ऐसे देते हैं उसने बताया था कि कोई भी बिल्कुल कोई भी नहीं बताए ठंडा हो ऐसा ठंडा कम वाला दूध लेना पड़ेगा भगवान पानी पीएंगे गर्म लेकिन दूध पीएंगे ठंडा ऐसा देखा हुआ इसको दूध नहीं पाए परिवार वाले से कहा तो जानना चाहिए ताकि मुझे रहना है बनाना मंत्र के लिए ऐसा बहुत मुझे नहीं पकड़ना राजा साहब क्यों भी जो है अभी इंद्री संबंध का पालन करना है तो उसके इंद्री के पानी ग्लास का भोजन रामदेव ऋषि को ये कहेगा आप महामानी महाराज बन जाएंगे तो आप ठंडा तो सुन बना ये भगवान कहना था ठंडी रोटी खाई जाती है किया जा सकता ठंडा ठंडा पानी वाला गर्म गर्म भोजन लाने देखो तो पूरा भोजन में देखते ये पत्ता भोजन अपने यहाँ का अवश्य माना है कोई पत्ता भी लागत दो उनके जीवन में होती है इलेक्ट्रॉनिक ओवन और मिक्सर का अन्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते चुपचाप मैंने बताया
जो प्रक्रिया जन्म की है उसी तरह से जन्म देते हैं
अब आपको ये बना हुआ कि इतने पहले संगम धारण नहीं किया होगा, तो बिना इसके भी और उनके लिए प्रक्रिया होती है, इस वजह से निश्चय अपने से बुद्धि से पार की असंतम हितम भगवान आप मनुष्य बैठे जन्म लेते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सब करते दिखाई देते हैं, लेकिन आप मनुष्य की सारी दोषों से ग्रस्त हैं, मैं खत्म कर दू। हम मनुष्यों के जैसे तो क्रिया करते हैं, लेकिन हम जिस तरह से दोषित हैं वैसे अपने संत निर्दोष हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता लंका में दीक्षा ली थी बढ़ाने में बताया तो समुद्र को पार करके जाना बना होगा, तो आप क्यों का देखकर
इस तरह से राउंड सीखने जैसा आचार्य ने लिखा
किसी के चक्कर लगाती है, दो चंदना दो से हमारी वाइफ से वो गंगा जी की फिर भागती करके उसके कारण पर उसके बाद में ऊपर वर्ग क्या उस तरह के आसान था। दो समुद्र में 110 मिलियन की पेटी है और पूरे के पूरे मध्य लोक में ये फैले हुए हैं। ढाई दिन के बाहर पर उसके दिन ढाई दिन के भीतर फैले हुए अपने वहां पर गैलेक्सी को इस तरह से डिफाइन किया। सब बैलेंस पेटी है। अब उनको अपन क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कि पूर्व पश्चिम की तरफ वो फैले सुनहरी पर्वत है। अब सुनहरी पर्वत कहां है, विदेश क्षेत्र के मध्य में विदेश क्षेत्र कहां पर है, आप थोड़ा सा कोशिश करके और उत्तर की तरफ चढ़ने से नहीं करें और फिर बाद में पूरे जीवन को चलते रहे घर पर तुम्हें उत्तर को दूसरा जीवन है उत्तर चलते चलेगा। तो दो चार पांच मीटर लेकर वॉक करते करते विदेश इतना अनुभव है लेकिन रोज की अवस्था के बारे में कि आपको उसके किलोमीटर पर अगर करना है तो आप उसके जगह पहुंच जाए। बहुत बहुत लंबी दूरी है विदेश क्षेत्र की और विदेश क्षेत्र के माध्यम जो गंगा जी के माध्यम है सुनहरी पर्वत 1,00,000 वाला है। अपने प्रेस में अभी जो नहीं है इसलिए अपने कंफ्यूज होते हैं और कोई विशेष बात नहीं। शुद्ध ज्ञान अपना छोड़ा है और अपने पास शुद्ध भी छोड़ा है इसलिए हमको श्रद्धापूर्वक उन चीजों को क्या देखा शिक्षण न्यायोजन सिस्टम एक भर नहीं जानी थी। आज्ञा सिद्धम सदग्राह्य ना अन्यथा राज्य योजना जो भगवान ने हमारे आज्ञ करवाने के लिए इतनी बढ़िया बात कही है तो ये छोटी मोटी बातों को हमसे भेद करते हैं बुद्धि खड़ी बनाएंगे। ये तो हमारी छोटी सी बुद्धि है जिसमें ना हमें सहयोग करने आता है ना हमारे अमेरिका आयु खंड में आएगा संदेश खंड में आएगा और तथा कथित जो अंग्रेज खंड है पांच जो कहां पर है ये भारत क्षेत्र हमारे जो विदेश क्षेत्र कहां है भारत क्षेत्र कहां है ये सब हमारी छोटी सी बुद्धि में समाता है। इसलिए जन्म है जन्म हम स्वीकार करें कि जैसे भगवान ने लिखा है वे इसी अनुरूप है मुझे मेरी अप्रोच से बाहर ऐसा सोचते थे और धारण करेंगे विशुद्ध बढ़ेंगे तो केवल ज्ञान होने पर सारी चीजें आपको आप पता लग जाएंगी। क्या एक साधु लगातार दो बार एक ही नगर में चतुर्मास कर सकते हैं, ये तो हो गया टेक्निकल क्वेश्चन। इसके बाद भावनात्मक यदि हाँ तो हम आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना ऐसे रहे हैं अगर एक चतुर्मास कर रहे हैं हम सभी से एक छोड़ दे रहे हैं भाव का पूरा वर्ग लोग दूसरे के काम से है दूसरे के काम पर है कि दूसरे वर्ग भरने से हुआ कल्याण ज्यादा नहीं और कोई अगर धर्मत्र धारण करे धर्म کہ بکتی چار سے جانا نہیں مل سکتا, بکتی کی جانا تو جانا پڑے گا, لوگ ہو جائے گا جو بکروں سے نہیں آسان بدماشا کا. کوئی اگر اس طرح سادھنا کرے بدماشرے کی تو بتیس کی بار مطلب بتیس بھر شاید سمجھ درشن ہو جائے تو دیکھنے میں بہت بھر جانا ہے, اور سوچ کر سمجھ درشن ہے تو دھیان میں دیکھنے میں بھر جانا ہے, اسپتی میں دیکھنے میں بھر جانا ہے, دھیان میں سشکت بھر جانا ہے, سوچ میں سمجھ درشن ہو گئی تو کم سے کم دیکھ
جیسا नहीं सकते। जीवन में घटना सात है और उनके भेद पर वो पंद्रह का 64 हो जाते हैं। उन्हीं पर पनीर पर है कल अपन में पहले वाले श्लोक में केवल है मन पर है और देह अभिमानस इन तीन बुद्धियों से युक्त विषय मेरे कल्याण में कारण बने ये पद है। फिर दूसरे पद में पन्ने कौष्ठस्थ ग्रहणों पर वृद्धि देह बुद्धि वृद्धि संधि में शमशोत की वृद्धि और तदानुसार ये चार वृद्धियों को धारण करने वाले विषय है मेरे कल्याण में मुक्त बने। फिर जिनको पांचों गुणों का बहुत विशेष विषय प्राप्त हो गया है विशेष सेवा जिनको प्राप्त हो गई है ऐसे मति देह मति ज्ञान के बल से जिन्होंने स्पर्श रसन ग्रहण चक्षु और श्रोत इन पांचों गुणों के उत्कृष्ट विषय से भी आगे के विषय को जानने की सामर्थ्य प्राप्त करने ऐसे इन पांच विद्या विद्या से युक्त जिन्हें भार या विषय है हमारे कल्याण में कारण बने इतनी मुझे बारह है व्यक्ति कितनी है पता तब आगे देखो क्या है प्रज्ञा प्रधाना प्रज्ञाशमन नाम के ऋषि मेरे लिए और कल्याण में कारण बने। प्रज्ञाशमन वे कहलाते हैं जो राजस्थान को तो नहीं पढ़ते पर सब श्रुत ज्ञानियों के बड़े बड़े श्रुत ज्ञानियों के भी समाधान करने योग सूक्ष्म संख्याओं का भी असाधारण समाधान निश्चय होकर के देते हैं। ये टेलेंट उनके भीतर है। एक बार चर्चा जब चली थी तो प्रज्ञा श्रवण नामक के जो श्रवण होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों के उत्पत्ति स्थान के बारे में मालूम होता है। वो प्रज्ञा श्रवण वो सर्वोत्तम उपाधि दी जाती है तो ये विद्या नहीं तो आप कंफ्यूज कर लेंगे। पिछले बार आपने प्रज्ञा श्रवण बहुत बड़े जूलॉजिस्ट को कहा था कि जो जीव विज्ञानी बहुत बड़े हैं वो प्रज्ञा श्रवण है तो वो आचार्य संघ की व्यवस्था है। ये यहाँ पर विज्ञान की चर्चा है तो प्रज्ञा श्रवण वो कहलाते हैं जिन्होंने जैसे अपन सोचा कई लोग जिनको की पढ़ा तो कम है अपन ने किसी एक आर्टिकल किसी ने मुझे दिया था पढ़ने के लिए तो उसमें लिखा हुआ था कि उसमें स्कूल में बैठे कहीं अक्षर ज्ञान का ही प्राप्त किया और इतनी बड़ी बड़ी चीजें उसको मानी है। देश भर के कौनसी घटना पढ़ने में आपको बताकर बताता हूँ कहीं कौनसी किस अपडाउन का क्या कारण है वो उसको मानी है मतलब बहुत सारी चीजें उसको मानी है जबकि वो आपको घटना बहुत मुश्किल दिक्कत करता था। ये कहते हैं इसका मंत्र का पेमेंट प्रज्ञा तो ये प्रज्ञाशमन वो वृद्धि है जिससे तपस्या की विशुद्धि के द्वारा द्वादशयों का अध्ययन करने किया लेकिन द्वादशयों का अध्ययन करने वालों के मन में उठने वाली संतानों का निश्चय होकर जो भाग देते हैं इतना उनके लिए और ज्ञान का विशेष श्रवण प्राप्त होंगे। ये प्रज्ञाशमन के नाते प्रत्येक युग परोपदेश के बिना स्वभाव से जो है विशेष रूप से ज्ञान और चरित्र का पालन करने की जिनको सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है वे कहना प्रत्येक युग तीर्थ होकर तो प्रत्येक युग होता है जो कि मोक्ष मार्ग पर बिना किसी उपदेश के और आसानी से चले जाते हैं। अब हम पता है कि बस समझाना पड़ता है कि देखो सामान कैसे करना देखो ऐसे साधन करना नहीं उनको तो शिक्षा नहीं उनको जो 28 वर्ण है 13 प्रकार का चरित्र है और जो आपको ज्ञान की बात है वो सारी चीजें उनको बलवर्क कहना चाहिए या दीक्षा लेता है और उनको वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग एक होकर वो भी बोला जिनको परोपदेश के द्वारा ज्ञान और आचरण की शिक्षा मिलती है। ये प्रत्येक वर्ग है जिनको की ज्ञान और आचरण की शिक्षा दूसरे के बिना अपने आप स्वतः ही उनके प्राप्त होते हैं प्रत्येक वर्ग ये विद्याधारी है। अभी वो बस पूर्व में वो कहलाते क्या होता है कि कोई नहीं यहाँ तीन दिन तक जो केंद्र शुद्ध केंद्र के कारणों में बहुत साधना करते हैं और ग्यारह और दस पूर्व का अध्ययन करते हैं। क्या है द्वादशयों पूरा का पूरा अपने यहाँ पर माना गया सबसे ज्यादा बड़ा जो है द्वादशयों जिसमें 12 अंग है आचार अंग इत्यादि को लेकर उसमें से 12वां जो अंग है अंग के मायने सीधा अपने समझो कि तीर्थंकरों की वाणी को जो पहचान किया जाता है डायरेक्ट वो कहलाता है अंग ज्ञान और उसके आधार पर जो अल्पबुद्धि और अल्पबल और अल्प आयु वाले शिष्यों के लिए आचार्य भगवंत कंपाइल करके और स्थित करते हैं वो कहलाता है अंग ज्ञान। ये अंग वरिष्ठ ज्ञान इस दोषण में भ्रमण के चंद्र के भी पांच भेद हैं, जिसमें से पूर्ण व्यक्ति, उस पूर्ण व्यक्ति चंद्र भेद तो ज्ञान तो पूरे पा गए, और उस ब्रह्मांड में से पूर्ण पूर्व में से भी चंद्र पूर्व में से दसवां पूर्ण जो पढ़ते हैं उसका नाम है विज्ञान प्रभाव। तो जब दसवां पूर्ण पर अपने अन्य महाराज अध्ययन करना शुरू करते हैं तो छोटी मोटी और बड़ी सब मिलाकर के 500 शास्त्रों यानी 1200 विद्याएं एक साथ उनको सिद्ध हो जाती है, और उन विद्याओं के देवता हाथ जोड़ करके उनकी पूजा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तब हमारे कोई नहीं होगा पर विज्ञान को लालच में आ जाता है, तब उनका उपयोग कर लेता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको भिन्न दस पूर्ण कहते हैं। और अगर कोई उन विज्ञान से बिना प्रभावित हुए और चमत्कार नहीं होता और आगे का अध्ययन बना रहता है तो उसको बोलते हैं अन्य दस पूर्ण, अर्थात जिसने दस पूर्ण का ज्ञान करते समय और अपने आप को विस्मित होने से बचा लिया तो वो अन्य दस पूर्ण में रेड्डी भारी होने लगा, मेरे कल्याण में नहीं खड़ा है, अन्य दस पूर्ण कहलाते। ऐसा माना जाता कि 11 कक्षा में अपने पढ़ाई की पूरी तैयारी, 12वीं कक्षा में अब आखिरी कक्षा में समझ लिया और उसमें आपके सामने बड़ी सारी सर्विसेज आई, आपको यह सर्विस मिल सकता है, आपको यह सर्विस मिल सकती, तो उन्होंने कहा सर्विस तो चाहिए थी पढ़ाई छोड़ो सर्विस जाने के लिए। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है, उन्होंने तो चाहिए थी और चाहिए नहीं करता जब काम करता था तो फिर भी उन्होंने मेरा ज्यादा नहीं करता था, उनको भिन्न दस पूर्ण भी कहते आप उनकी प्रशंसा नहीं थी, वो तो पहले ट्रस्ट से एक सोकर के अपना पतन कर लेते हैं, ये आपको अलग चीज है उसकी चर्चा नहीं कर रहा। जो उसमें पास हो जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं वे कहलाते हैं अभिन्न दस पूर्ण, ये एक वृद्धि है। फिर चतुर्दश पूर्ण और पूरा अध्ययन करके और 11 और 14 पूर्ण का जो जिनको ज्ञान हो जाता वो चतुर्दश पूर्ण कहलाते हैं, वो तटस्थवादी अर्थात इन भी आकर के उनसे अगर डिस्कशन करें तो वो उनको हरा नहीं सकता है, उस वृद्धि के प्रभाव से बाधित तो डिबेट में जैसे अवलोकन करते हैं डिबेट होती है तो डिबेट में और दूसरे को जीत लिया, इसी तरह से कोई अगर उससे शंका समाधान करे कितना भी बात विवाद करे और वे सबका समाधान आसानी से देते हैं जब तक तटस्थवादी ये वृद्धि की जाती है। इस तरह ये 17वीं अष्टांग महानिमित्त कुशल ये 18 नंबर की वृद्धि है, उसके बारे में तो यह है कि अंतरिक्ष मान मतलब पृथ्वी अंग मनुष्य के और पशुओं के आठ अंग है, उन अंगों को देख करके उनके स्वर को सुन करके उनके शरीर में तीन वस्तु प्राणी को देख करके व्यंजन और लक्षण को देख करके छह ये कपड़ा यहां से चूने में काट लिया या कहीं और से काट लिया, उसके माध्यम से आने वाले समन्वय होने वाले शुभ और अशुभ इन सब का ज्ञान हो जाने को समझ कर सकते। इतनी चीजों से अंतरिक्ष में चंद्रमा सूर्य इत्यादि के गमन या संचार को देख करके या कि जमीन के उनके स्वर को जैसे कि आप हिंदू करने वाले को स्वर का नीचे मालूम होता है, उनके लिए तो हाथ में और जमीन को देख करके हाथ में मेरा भी नहीं है स्वर को स्पेशल भी नहीं चाहिए उनका स्कूल, और वो बता देंगे कि हमें यह रहने वाले को किस तरह से कारण बनेंगे, शुभ और अशुभ में कारण बनेंगे, इस तरह से अंग देख करके स्वर को पहचान करके या कि तिल वस्तु इत्यादि देख करके लक्षण और व्यंजन देख करके कोई चीज कहीं से लग गई है कौन उसका स्वामी है उस चीज के निमित्त से उसको क्या सुविधा होना है ये पहले से जान लेते हैं, और स्वप्न विज्ञान भी जिनको जिसके निमित्त से वो आगामी शुभ अशुभ को जान लेते ये इतना ध्यान आधा महा निमित्त ही है, उनके माध्यम से होने वाले ज्ञान की सामर्थ्य जिनको प्राप्त हो जाती वो अष्टांग महा निमित्त कुशल ऋषि कहलाते। इस तरह से 18 पहले हो गई बुद्धि वृद्धि, इन सबको धारण करने वाले इंडिविजुअली और कंप्लीटली अलग अलग थे, बल्कि इन 18 को पूरी तरह से धारण करने वाले सब ऋषि जो है लोग कल्याण में कारण बने। फिर कहा गया अब जो है चारण वृद्धि कहलाती है, चारण वृद्धि में दो तरह से शायद भेद किए हैं क्रिया और विक्रिया, विक्रिया अलग अलग है, चारण वृद्धि में अलग अलग किसको चलना है, देखने की चीज ये उसमें उपस्थित होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो है उनके नाम लगना रहते हैं, 64 साल में नहीं नाम रखते, 24 साल में
आचार्य महाराज का जब जन्म हुआ था तो उनके नाम क्या सोचेंगे,
ऋषि का उनके यहां पर जन्म हुआ मां के मन पर, तो वहां हर्षो के निगरने पर इस तरह की चीजें बहुत आसान होते हैं। अपने को कभी चार मंदिर के बारे में मां स्वप्न में आएंगे अच्छा सोचा कि उनको कभी सही नहीं है अवश्य कर रहा है ऐसा नहीं देखता सपने में खाना पीना आ रहे हैं आगे तो देखा अवश्य
Thank you.
उपवास करने का वर्षों वर्षों का सब में खड़े रहने पर भी शरीर की कोई क्षति नहीं होती और स्वस्थ और प्रसन्न चित्त वो रहे आते उस रीति के समाज ये काम धन होती चलाते इस तरह से अपन में इतने व्यक्ति धारी उन्हें महाराज और उनकी विशुद्धि के बारे में समझते हैं थोड़े से क्वेश्चन भी करते हैं। चर्चा है और इतनी ज्यादा उसको भूमि प्राप्ति की गई है से समझा कि आत्मरक्षा में कि हिंसा हो जाने पर हम तक में दोष लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है अपने बाबा व्रतों का दो कदम से पालन करने का उपदेश आचार्य ने दिया। व्रत तो व्रत ही है, न भी छोटे होते हैं न बड़े होते, क्योंकि सब भगवान के भगत कहे गए, उनको जब हम आंसर रूप से पालन प्रदान करते हैं तब भी अनुभव उनके नाम में है छोटा और उनके नाम में है जो महान को फॉलो करे, तो फॉलो महाव्रतों को फॉलो करने वाले अनुभव है। तो ये श्रावकों के होते हैं जब वो आंशिक रूप से उन व्रतों का पालन करते हैं और जब वो पूर्ण रूप से करने लगते हैं तो वे उन्होंने कहलाने लगते हैं। आंशिक रूप से जो पालन करेगा वो श्रावक अपने होगा, पाक्षिक श्रावक तक कहना वैसे अपन सब सब व्यस्त है, अपन श्रावक को खुद अपने भाव श्रावक को जब बनेंगे तय करेंगे तो वे श्रावक करेंगे वो भी स्थानीय रूप से है। पाक्षिक श्रावक मतलब अपने अहिंसा धर्म का पक्ष लेना है वो पाक्षिक श्रावक, और पाण कर्म व्रतों को पालन वो तो भाई 33 श्राव का चार है सबने अलग अलग हिसाब से है, तो हम जो श्राव का चार से यू है वो आचार्य चंद्र स्वामी का डॉक्टर करण जब श्राव का चार है, नहीं तो आप 34 को हवाला और ब्रह्म होती ऐसी ही नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है पर तो एक ही से हम हो रहा है इसमें कि सामान्य तो खत्म हो चुका अष्टम अष्ट हूं हूं जो है अनुभूत युक्त मध्य मधु मनुष्य करता है और पांच अनुभूत का पालन करना ये आठ मूल है पाक्षिक श्रावक के, ऐसी चर्चा करी जा रही चाहे भगवान तो उसमें पांच अनुभूत ग्रहण करने वाले श्रावक कहलाएंगे। वो होगी अब देखिए अपन कि ये अनुभूत कैसा पालन करें तो स्थूल रूप से अहिंसा का पालन करना, हिंसा चार प्रकार की होती है संकल्पित प्रारंभिक उद्योगी और विरोधी, इन चार में से शारक किसका पाठ करे संकल्पी हिंसा का, संकल्पी हिंसा में भी त्रस हिंसा को पार दुखा स्थावर व संभावे ये लाता है सब। अब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करे, हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, मंदिर में पूजा कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं कि हम आपके भगवान को लेंगे तो उनके लिए आपका हिंसा करना चाहिए तो दूसरे लेंगे तो मतलब हो संपत्ति ले जा रहे कि हम आपके बेटे को जाने ले जा रहे तो हम क्या कहेंगे आप बाबा देखिए ऐसा कहेंगे, फिर नहीं मानेगा तो जोर से कहेंगे, मन में मानेगा तो फिर कहेंगे आवाज में मुझे धन को कहेंगे नहीं तो भी है नहीं धन कहेंगे, और फिर अगर उससे हमें मरना पड़े अपनी आत्मरक्षा अपने परिवार की रक्षा अपने समाज की अपने धर्म की अपने देश की सेनापति बनकर के देखो चालन भाई देशभक्ति श्रावक थे देशभक्ति श्रावक पंचम स्थान भक्ति और चालन भाई ध्यानभक्ति थे जिनके जिनके बचपन का नाम गोमत था, जिनके नाम पर गोमतेश्वर गोमत के ईश्वर, जिनके नाम पर गोमत साहब ये देखिए ना जिन सिद्धांत का प्रवर्ती में देखिए गोमत साहब उनके नाम से लिखा उनके बनाने के लिए गोमत साहब की रचना थी सत्कर्म आदमी में से देश बना करके उसको। तो मेरा कहने का आशय कि हम विरोधी हिंसा भ्रस्त जीवन में रह करके आत्मरक्षा और सबकी रक्षा के लिए छंद गृहस्थी के कार्यों को करने में होने वाले हिंसा को आयम की हिंसा कहते हैं, वो भी होगी लेकिन इतना अनुमान रखेंगे कि चार घरों की रोटी बनाने लगे 140 का आते हैं मौसम के घर उनका बड़ा बनने का मौका है पूरा भिन्न का है तुम्हारे घर में सुकून से पैदा हो तभी हमें आयम की हिंसा होती है उस काम करना, पेस्टिसाइड बनाना, देखना, सब ये कौन कर जिससे हार है राष्ट्र को बात, इससे बच करके अपना उद्योग सही रूप से करना, जिसमें कम से कम हिंसा हो, वो उद्योग हिंसा भी शराब के लिए क्षण है, बस इतना ही है कि संकल्प पूर्वक इरादा करके मन वचन कार्य कृत कार्य परमात्मा नौ कोटि की शुद्धि से दूसरे जीवों का घात न करेगा, न करवाएगा, न कई हुए की प्रशंसा करेगा। ये संकल्प हिंसा स्थूल रूप से अहिंसा अनुवृत्ति होगी। अब इसमें प्रश्न ये है कि अनुभव का ग्रहण करना, जब अपने मन में सच्चे हैं वो शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो तो करना चाहिए। हमारा अनुग्रह पालन करने से कल्याण होगा, आत्मकल्याण की भावना हो तो करना चाहिए। देखा जाए कि नहीं करना चाहिए, तो निर्णय के स्वतंत्र जाओ तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं समझ
Thank you.
कि जो छोटी बनाती है उसके छोड़ बनाकर पहले उनके भी आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करना, अभी आत्मा के स्वरूप का चिंतन, अभी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना हो तो शुद्ध ब्रह्मांड का चिंतन करो। धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि जो चिंतन का स्वरूप है सही मेरा स्वरूप है। ऐसे करके जो मेरा स्वरूप है सो शब्दों का है जो ऊपर जो शब्दों का स्वरूप है सर मेरा स्वरूप है, मेरा लक्ष्य उस शब्द की प्राप्ति का है। ऐसी क्रिया सीधे है तो उनको किसी भी धर्म के लिए तो जो बड़े गुण है उनका ध्यान करना चाहिए, गुणों का ध्यान तो उनका धर्म जीत और ध्यान करना पड़ेगा। तो कौन बड़ा है अभी तक तो वे गणेश जी को बनाना है, लेकिन गणेश जी का हो तो एक दिन हमने देखा कि गणेश जी के घर को चूर खाओ चूहरा तब समझ में आया कि गणेश जी बनाने में चूहे नहीं बनाए तो चूहे की पूजा शुरू कर दी तो फिर गणेश नहीं बनाने को अब चूहे की पूजा नहीं कर रहा है कि गणेश बनाने आए समझ तो बना दिया